एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे हम सबने मतलब देखा सुना तो है, लेकिन शायद ही कभी ठीक से समझा हो। हम बात करेंगे एनिस बी एडमिंस की किताब रास्ताफारी के बारे में।
बिल्कुल, और जब भी रास्ताफारी का जिक्र आता है तो ज्यादातर लोगों के जहन में क्या आता है?
वही लंबे लंबे ड्रेडलॉक्स, बॉब मार्ले का संगीत
और गांजे का धुआं।
लेकिन ये सब तो मतलब बस सतह की बातें हैं। ये किताब हमें उस सतह के नीचे ले जाती है। ये दिखाती है कि ये महज एक लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा, जटिल और गंभीर धार्मिक आंदोलन है,
जिसकी अपनी एक पूरी विचारधारा है।
हाँ, और एक बहुत शक्तिशाली इतिहास है।
और यही आज की हमारी पड़ताल का मिशन है, बनी बनाई छवियों से परे जाकर रास्ताफारी की आत्मा को समझना। ये समझना कि जमैका के गरीब तबके से निकला एक छोटा सा आंदोलन कैसे एक ग्लोबल आवाज बन गया।
और इस सफर पर हमारे गाइड हैं लेखक खुद, जो इस विषय पर बात करने के लिए शायद सबसे सही इंसान है।
हाँ, लेखक का परिचय भी बहुत दिलचस्प है। डॉक्टर एनिस बैरिंगटन एडमंड्स, वो केनियन कॉलेज में धार्मिक अध्ययन के प्रोफेसर हैं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो खुद जमैका में पले बड़े हैं।
बिल्कुल, उसी धरती पर जहां इस आंदोलन ने जन्म लिया।
हाँ,
और यही बात इस किताब को मतलब बाकी किताबों से अलग करती है। एडमंड सिर्फ एक बाहरी विद्वान नहीं है
जो दूर बैठकर विश्लेषण कर रहे हों।
सही कहा,
उन्होंने इस आंदोलन को करीब से देखा है, महसूस किया है। उनकी लिखाई में अकादमिक रिसर्च की बारीकी तो है ही, साथ ही उस संस्कृति के लिए एक अंदरूनी समझ और सम्मान भी है। वो सिर्फ क्या और कैसे नहीं बताते, बल्कि क्यों की तह तक जाते हैं। मतलब ये कि वो सिर्फ तथ्यों को नहीं परोसते, बल्कि उस आंदोलन की धड़कन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए तो फिर किताब की दुनिया में कदम रखते हैं। किताब का जो मुख्य तर्क है वो क्या है?
देखिए, किताब का सबसे बड़ा और केंद्रीय तर्क ये है कि रास्ताफारी को एक सतही चलन या फैशन समझना, ये इसकी सबसे बड़ी तौहीन है। एडमंड्स कहते हैं कि ये असल में एक पूरे तरह से विकसित धर्मशास्त्रीय प्रणाली है, और ये कोई हवा में पैदा नहीं हुई। ये गुलामी और उपनिवेशवाद के सैकड़ों सालों के दर्द, अपमान और उत्पीड़न के जवाब में पैदा हुई। अश्वेत प्रतिरोध की एक बहुत शक्तिशाली आवाज है।
प्रतिरोध की आवाज, ये बहुत अहम बात है। तो किताब हमें इस आवाज के बनने की पूरी कहानी बताती है।
हाँ बिल्कुल, किताब हमें 1930 के दशक के जमैका से लेकर आज तक के सफर पर ले जाती है। ये दिखाती है कि कैसे कुछ मुट्ठी भर लोगों का विश्वास एक वैश्विक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति में तब्दील हो गया।
अच्छा,
और इस सफर में किताब हमें बेबिलोन और ज़ायन जैसी इसकी सबसे जरूरी अवधारणाओं से मिलवाती है।
बेबिलोन और ज़ायन, ये शब्द अक्सर बॉब मार्ले के गानों में सुनने को मिलते हैं, इनका मतलब क्या है?
बेबिलोन सिर्फ कोई जगह नहीं है।
हाँ,
ये एक प्रतीक है।
किस चीज का?
पूरी दमनकारी पश्चिमी व्यवस्था का, उसका भौतिकवाद, उसका नस्लवाद, उसका अन्याय। ये वो सिस्टम है जिसने अश्वेत लोगों को गुलाम बनाया।
और ज़ायन है वादा की गई भूमि, आध्यात्मिक और भौतिक मुक्ति का ठिकाना,
जो कि अफ्रीका है।
हाँ, खासतौर पर इथियोपिया। तो ये पूरी लड़ाई एक तरह से बेबिलोन से निकलकर ज़ायन तक पहुंचने की है।
तो चलिए इस लड़ाई की शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये आंदोलन आखिर शुरू कैसे हुआ?
किताब हमें 1930 के दशक के जमैका ले जाती है। हमें उस माहौल को समझना होगा। गुलामी को खत्म हुए करीब 100 साल हो चुके थे, लेकिन समाज में अश्वेत लोगों की हालत बहुत खराब थी।
मतलब आजाद तो थे, लेकिन बराबरी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो आर्थिक और सामाजिक तौर पे अब भी हाशिए पे थे। औपनिवेशिक व्यवस्था का पूरा ढांचा उन्हीं के शोषण पे टिका था, और शहरों में भयानक गरीबी थी।
यानी एक तरह की निराशा और बेबसी का माहौल था।
बिल्कुल, और ऐसे ही माहौल में नए विचारों को जमीन मिलती है। उस दौर में मार्कस गार्वे नाम के एक बहुत प्रभावशाली विचारक हुए।
हाँ, मैंने उनका नाम सुना है।
वो एक अश्वेत राष्ट्रवादी थे, और उन्होंने ब्लैक प्राइड यानी अश्वेत गौरव का नारा दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि अपने आत्मसम्मान को पहचानो और अपनी जड़ों की ओर लौटो।
उनका ही वो प्रसिद्ध नारा था ना, अफ्रीका की ओर देखो।
हाँ, लुक टू अफ्रीका। गर्वे ने कहा था कि अफ्रीका की ओर देखो, जहां एक अश्वेत राजा का राजाभिषेक होगा और वही तुम सबका उद्धार करेगा। ये एक भविष्यवाणी की तरह थी।
और फिर
1930 में दुनिया ने देखा कि इथियोपिया में रास्तफारी मक्कोनेन की ताजपोशी हुई और वो सम्राट हेली सिलासी वन बने,
और लोगों ने इसे गार्वे की भविष्यवाणी का सच होना मान लिया।
हाँ, जमैका में शुरुआती प्रचारकों ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक घटना की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे बाइबल में की गई भविष्यवाणियों की पूर्ति के रूप में देखा।
अच्छा,
उनके लिए हेली सिलासी सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, बल्कि खुद ईश्वर थे जो धरती पर अवतरित हुए थे।
एक अश्वेत मसीहा।
हाँ, एक अश्वेत मसीहा जो उन्हें बेबीलोन की गुलामी से आजाद कराने आया था। यहीं से रास्ताफारी आंदोलन की नींव पड़ी।
ये तो एक जबरदस्त वैचारिक छलांग है, एक सम्राट को ईश्वर मान लेना। यहीं से शायद उनका अनूठा धर्मशास्त्र शुरू होता है।
बिल्कुल, ये रास्ताफारी के धर्मशास्त्र का केंद्र है। वे बाइबल को मानते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या अपने नजरिए से करते हैं,
अफ्रीकी पहचान को केंद्र में रखकर।
सही कहा। सदियों से उन्हें एक सफेद यूरोपीय यीशु की कहानी सुनाई गई थी, जिसे वो अपने उत्पीड़न से जोड़कर देखते थे। रास्ताफारियों ने उस छवि को सिरे से खारिज कर दिया।
सनग्लोजर में ईश्वर का रूप कैसा था?
उनके लिए ईश्वर, जिन्हें वो जा कहते हैं, का साक्षात रूप थे सम्राट हेली सिलासी। इसे आप धर्मशास्त्रीय विद्रोहों का सबसे बड़ा कदम कह सकते हैं।
कैसे?
एक जीवित अफ्रीकन सम्राट को अपना ईश्वर घोषित करके उन्होंने उस पूरी औपनिवेशिक मानसिकता पे सीधा हमला किया, जिसने उन्हें बताया था कि ईश्वर भी गोरा है।
मतलब ये कहना था कि हमारा ईश्वर हमारे जैसा है, तुम्हारे जैसा नहीं।
बिल्कुल, और बेबीलोन ज़ायन का विचार भी यहीं से और मजबूत होता है। बेबीलोन वो सब कुछ है जो सफ़ेद, पश्चिमी, भौतिकवादी और दमनकारी है। सरकारें, पुलिस, चर्च,
पैसे का सिस्टम,
ये सब बेबीलोन का हिस्सा है। और ज़ायन है वापसी का वादा, आध्यात्मिक घर, अफ्रीका। तो एक रास्ता के लिए जीवन का मकसद ही इस बेबीलोन सिस्टम से मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खुद को अलग करना है
और एक दिन ज़ायन लौटना है।
हाँ,
तो ये सिर्फ एक विश्वास नहीं है, बल्कि इसे जीने का एक तरीका भी है। किताब में लिविटी की एक अवधारणा का जिक्र है, ये क्या है?
लिविटी का मतलब है जीवन जीने का तरीका। ये इस बात पर जोर देता है कि आपका विश्वास सिर्फ आपके दिमाग में या पूजा पाठ तक सीमित नहीं होना चाहिए,
उसे आपके हर काम में दिखना चाहिए।
हाँ, आपके पूरे जीवन में। आपका शरीर एक मंदिर है और आप उसके साथ जो भी करते हैं वो एक पवित्र कार्य है।
और इसी लिविटी का हिस्सा हैं वो प्रथाएं जिन्हें हम अक्सर देखते हैं, जैसे कि ड्रेडलॉक्स।
सही कहा, ड्रेडलॉक्स सिर्फ एक हेयर स्टाइल नहीं है, इसके कई गहरे मतलब हैं। एक, यह बाइबल में वर्णित नाजीरी प्रतिज्ञा का प्रतीक है, जो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को दिखाता है।
अच्छा।
दूसरा, यह यहूदा के शेर की अयाल का प्रतीक है, जो हेली सिलासी का एक शाही खिताब था। और सबसे बढ़कर, यह बेबीलोन के बनावटी सौंदर्य मानकों को अस्वीकार करने का एक ताकतवर बयान है।
मतलब हम तुम्हारी खूबसूरती की परिभाषा को नहीं मानते।
बिल्कुल।
और खाने पीने के बारे में भी उनके सख्त नियम हैं, जिसे ईटल डाइट कहते हैं।
हाँ, ईटल शब्द वाइटल यानी प्राणवंत से आया है। ये डाइट पूरी तरह से प्राकृतिक और शुद्ध भोजन पर आधारित है।
ज्यादातर शाकाहारी होते हैं।
हाँ, ज्यादातर। वे नमक, केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स और कई तरह के मांस से परहेज करते हैं। इसके पीछे का दर्शन ये है कि जैसा भोजन आप शरीर में डालेंगे, वैसी ही आपकी चेतना होगी।
शुद्ध शरीर, शुद्ध आत्मा।
हाँ, कुछ वैसा ही।
और गांजे का उपयोग, इसे तो बहुत ज्यादा मतलब सनसनीखेज बनाया जाता है।
किताब इस गलतफहमी को भी दूर करती है। रास्ताफारी के लिए गांजा कोई नशा या मनोरंजन की चीज नहीं है।
तो क्या है?
यह एक पवित्र जड़ी बूटी है, एक संस्कार है। इसे ध्यान लगाने, आध्यात्मिक ज्ञान पाने और सामुदायिक चर्चा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन चर्चाओं को रीजनिंग सत्र कहते हैं, जहां लोग साथ बैठकर पवित्र धुएं के बीच आध्यात्मिक और सामाजिक मुद्दों पर गहरी बातचीत करते हैं।
ये ईश्वर से जोड़ने का एक माध्यम है।
हाँ, उनके लिए ये वही है।
तो हमने उनके जीने के तरीके को समझा, लेकिन क्या सभी रास्ताफारी एक ही तरह से सोचते और रहते हैं, या इस आंदोलन के अंदर भी विविधता है?
ये एक बहुत जरूरी सवाल है। बाहर से देखने पर ये एक ही आंदोलन लगता है, लेकिन अंदर कई अलग अलग शाखाएं या मेंशन हैं।
जैसे
न्याबिंगी सबसे पुरानी और पारंपरिक शाखा है। फिर है बोबो अशांति, जो अपने बेहद सख्त अनुशासन और नियमों के लिए जाने जाते हैं।
अच्छा।
वे अपने समुदाय में अलग रहते हैं। एक और बड़ी शाखा है 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल। यह तुलनात्मक रूप से ज्यादा उदार मानी जाती है।
और बॉब मार्ले, वो किस शाखा से थे?
बॉब मार्ले इसी शाखा से 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल से जुड़े थे। यह विविधता दिखाती है कि यह एक जिंदा सांस लेता हुआ आंदोलन है।
और आपने बॉब मार्ले का नाम लिया, इस संदेश को जमैका से निकालकर पूरी दुनिया तक पहुंचाने में संगीत का कितना बड़ा हाथ था?
बहुत बड़ा। आप कह सकते हैं कि रेगे संगीत इस आंदोलन का सबसे बड़ा दूत बना। बॉब मार्ले ने रास्तफारी के दर्शन, बेबीलोन के खिलाफ बगावत, जाह पर विश्वास, मुक्ति का संदेश को अपने संगीत के जरिए दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया।
जो बातें शायद किताबों में बंद रह जाती वो उनके गानों के जरिए आम लोगों तक पहुंच गई।
बिल्कुल, संगीत इस आंदोलन की आवाज बन गया।
तो हमने इसकी जड़ों को देखा, इनके विश्वास को समझा और इनके जीने के तरीके पर भी बात की। अगर इन सबको जोड़कर देखें तो वो कौन सी बड़ी तस्वीर उभरती है? किताब के मुख्य विषय क्या हैं?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी विषय है प्रतिरोध का धर्मशास्त्र,
थियोलॉजी ऑफ रेजिस्टेंस।
हाँ, ये आंदोलन अपनी बुनियाद में ही उत्पीड़न के खिलाफ एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जवाब है। ये कहता है कि असली आजादी बंदूक से नहीं बल्कि दिमाग से शुरू होती है,
मानसिक गुलामी से मुक्ति।
बिल्कुल, मेंटल स्लेवरी से मुक्ति, जैसा बॉब मार्ले ने अपने गाने में कहा। दूसरा बड़ा विषय है अफ्रीकी पहचान की पुनर्स्थापना,
अपनी पहचान को वापस पाना।
हाँ, गुलामी ने करोड़ों लोगों से न सिर्फ उनकी आजादी छीनी बल्कि उनकी भाषा, उनका धर्म, उनकी संस्कृति सब कुछ छीन लिया। ये आंदोलन उसी खोई हुई पहचान और गौरव को वापस पाने का एक जबरदस्त प्रयास है।
अगर भारत के संदर्भ में सोचें तो ये बात उन कई सामाजिक आंदोलनों की याद दिलाती है जो अपनी स्थानीय पहचान को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं।
बिल्कुल सही कनेक्शन है। और एक तीसरा विषय भी है जो थोड़ा जटिल है, प्रामाणिकता और वैश्वीकरण के बीच का तनाव।
वो कैसे?
जैसा हमने कहा, बॉब मार्ले ने इस संदेश को दुनिया भर में फैलाया, लेकिन इसके साथ ही आंदोलन के प्रतीकों का व्यावसायीकरण हो गया,
कमर्शलाइजेशन।
हाँ, आज रास्ताफारी के रंग, ड्रेडलॉक्स, बॉब मार्ले की टी शर्ट्स, ये सब फैशन का हिस्सा बन गए हैं और अक्सर लोग इनके पीछे के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को नहीं समझते।
ये तो हर उस आंदोलन के साथ होता है जो लोकप्रिय हो जाता है, उसकी धार थोड़ी कुंद पड़ जाती है। किताब में कुछ ऐसे विचार या पंक्तियां हैं जो आपको बहुत यादगार लगीं?
हाँ, कई हैं। एक विचार जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा वो कुछ इस तरह है। हेली सिलासी का दैवीकरण धर्मशास्त्रीय विद्रोह का अंतिम कार्य था। एक जीवित अफ्रीकी सम्राट को अपना ईश्वर मानकर शुरुआती रास्तों ने सीधे तौर पर मसीही की उस सफेद यूरोपीय छवि को खारिज कर दिया जिसका इस्तेमाल सदियों से उनके उत्पीड़न को सही ठहराने के लिए किया गया था।
वाह, ये बात सीधे आंदोलन के दिल पर चोट करती है। ये सिर्फ एक विश्वास नहीं बल्कि एक गहरा राजनीतिक बयान है।
हाँ, ये अपनी नियति को अपने हाथ में लेने जैसा था। एक और विचार लिबर्टी से जुड़ा है।
बताइए।
लिबर्टी ये सुनिश्चित करती है कि विश्वास केवल रविवार का मामला ना हो बल्कि एक सर्वव्यापी वास्तविकता हो। शरीर एक मंदिर है और इसलिए आहार, हेयर स्टाइल और यहाँ तक कि भाषा के विकल्प भी पवित्र कार्य बन जाते हैं।
मुझे ये विचार बहुत पसंद आया। यह धर्म को कर्मकांडों से निकालकर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की बात करता है। आपकी हर छोटी बड़ी पसंद आपकी आस्था का प्रतिबिंब बन जाती है
और यही इसे एक बहुत ही जीवंत दर्शन बनाता है।
तो इस किताब की बातों को सुनकर आज के समय में हम इससे क्या सीख ले सकते हैं? इसका हमारी असल जिंदगी में क्या इस्तेमाल हो सकता है?
मुझे लगता है एक बहुत बड़ी सीख है कहानियों और वैकल्पिक नजरियों की ताकत को समझना। ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे हाशिए पर धकेल दिए गए समुदाय अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए अपनी खुद की कहानियां गढ़ते हैं।
जो इतिहास विजेताओं ने लिखा है ये उसे चुनौती देने का एक तरीका है।
बिल्कुल। और एक और व्यवहारिक सीख है जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, सांस्कृतिक प्रशंसा और सांस्कृतिक विनियोग के बीच के फर्क को समझना,
अप्रिसिएशन वर्सेस अप्रोप्रिएशन।
हाँ, ये किताब हमें याद दिलाती है कि किसी दूसरी संस्कृति के प्रतीकों जैसे ड्रेडलॉक्स को अपनाना कूल लग सकता है, लेकिन अगर हम उनके गहरे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संदर्भ का सम्मान नहीं करते तो हम अनजाने में उनका अपमान कर रहे होते हैं।
हम अब इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इस पूरी बातचीत में आपके लिए सबसे हैरान करने वाली या सबसे अहम बात क्या रही?
मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा घर कर गई वो ये है कि रास्तफारी सिर्फ एक विरोध आंदोलन नहीं है, ये एक पूरी तरह से विकसित विश्व धर्म है जिसका अपना गहरा धर्मशास्त्र है और जीवन जीने का एक अनुशासित तरीका है।
इसे अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता,
जो कि बहुत बड़ी भूल है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि ये किताब दिखाती है कि इंसान गहरे से गहरे ऐतिहासिक सदमों के बावजूद उम्मीद और पहचान गढ़ने की एक अविश्वसनीय क्षमता रखता है। गुलामी और उपनिवेशवाद के मलबे से रास्ताफारी ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की और उसे जीना शुरू किया जो न्यायपूर्ण हो, आध्यात्मिक हो। यह आंदोलन इंसान की इसी रचनात्मक और जुझारू भावना का एक शक्तिशाली प्रमाण है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।